आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। गुड इवनिंग, 24 मार्च है आज, शुक्रवार का दिन। आज तक रेडियो पर दिन भर सुन रहे हैं आप, मैं हूं नितिन ठाकुर। कहने की कला पर सियासत का दारोमदार टिका है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक बयान पटरी से ऐसा उतरा कि मानहानि केस में सूरत कोर्ट से उन्हें 2 साल की सजा हो गई। जमानत पर तो वो छूटे, मगर इस मुकदमे को आधार बनाकर उनकी संसद सदस्यता खत्म कर दी गई। अब मामला है टाइट, राजनीति जोरों पर, तो कांग्रेस इसे कैसे भुनाने वाली है? वायनाड में राहुल का ऑप्शन कौन होगा और इस लड़ाई में कानूनी पेच कहां फंसने वाला है? फिर एक कानूनी पेच पंजाब में भी फंसा है। अमृतपाल सिंह की तलाश में पंजाब पुलिस दर दर भटक रही है। दावे कई हैं, पड़ताल करेंगे। उधर मोदी सरकार का ऐलान है कि 2025 तक भारत टीबी मुक्त होकर रहेगा। आज इसलिए कहा क्योंकि वर्ल्ड टीबी डे है, तो इस बहाने भारत की स्थिति को खंगालेंगे। कैसे कोरोना ने टीबी मरीजों की संख्या बढ़ा दी है और टीबी से मुक्त होने में भारत की जद्दोजहद अभी कितनी बाकी है। और आज दिल्ली के जंतर मंतर पर जानलेवा बीमारी डीएमडी से पीड़ित बच्चों के माता पिता ने एक रैली निकाली। सरकार से उनकी मांग है कि डीएमडी से पीड़ित बच्चों का एक डेटाबेस तैयार किया जाए और इस बीमारी पर रिसर्च हो। तो इस खबर पर भी बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे पहले 60 सेकंड हेडलाइन सुनते हैं सूरज कुमार से।
शुक्रिया नितिन। मानहानि मुकदमे के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म, कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन। AICC दफ्तर में कांग्रेस की इमरजेंसी बैठक शुरू। बैठक में शामिल होने के लिए रवाना हुए राहुल गांधी। वायनाड सीट पर अप्रैल में हो सकता है उपचुनाव, जल्द होगा ऐलान। कांग्रेस नेता सिद्धारमैया पर गरमाया विवाद, पार्टी कार्यकर्ता को जड़ा थप्पड़। सुप्रीम कोर्ट ने UAPA कानून पर पलटा 2011 का फैसला, कहा सरकार को सुने बिना दिया गया फैसला गलत। गैंगस्टर लॉरेंस और गोल्डी समेत 14 लोगों के खिलाफ NIA की दूसरी चार्जशीट दायर, 7 की संपत्ति जब्त, 62 खाते फ्रीज। कर्नाटक पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह, येदियुरप्पा और CM बसवराज बोम्मई से की मुलाकात। काशी में प्रधानमंत्री ने किया रोपवे का शिलान्यास, देश का पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट होगा। और कनाडा में खालिस्तानियों ने महात्मा गांधी की मूर्ति तोड़ी, खालिस्तान का झंडा लगाकर लिखी अपमानजनक बातें।
यह है दिन भर, मैं हूं नितिन ठाकुर। कहते हैं समय का पहिया घूमता है और इतिहास अपने आप को दोहराता है। 1975 में भारत की प्रधानमंत्री रहीं इंदिरा गांधी के इलेक्शन को कोर्ट ने इनवैलिड करार दिया था और उन्हें अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी थी। करीब 48 बरस बाद मानहानि के एक मुकदमे में 2 साल की सजा होते ही उनके पोते राहुल गांधी की लोकसभा मेंबरशिप चली गई। आज लोकसभा सचिवालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और राहुल की संसद सदस्यता रद्द करने की जानकारी दे दी। इस खबर के सामने आते ही कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष की लगभग सभी पार्टियां और बड़े नेताओं ने मोदी सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये सारे प्रयास राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए किए गए हैं।
सच बोलने वालों को लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकों के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया है।
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि संसद में अदाणी घोटाले का मामला उठाने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है।
5 फरवरी से JPC की मांग की इस घोटाले में, क्योंकि ये घोटाला सिर्फ अडानी से संबंधित नहीं है, ये घोटाला प्रधानमंत्री की नीयत और प्रधानमंत्री की नीतियों से भी जुड़ा हुआ है।
उधर प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि PM मोदी ने और BJP नेताओं ने संसद में पंडित नेहरू और उनके परिवार पर लगातार कीचड़ उछाला, लेकिन उन पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं राहुल गांधी ने एक ट्वीट में यह भी लिखा कि मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। इस मसले पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जगह जगह सड़कों पर उतरे, उनके समर्थन में नारेबाजी की और दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर में पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की बैठक हो रही है। तो एक तरफ कांग्रेस इस मसले पर पॉलिटिकली और लीगली दोनों तरीकों से लड़ने की बात कह रही है, वहीं BJP इस मसले को OBC समुदाय के अपमान से जोड़कर पूरे देश में अभियान चलाने की बात कह रही है। 2 केंद्रीय मंत्रियों धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राहुल गांधी पर निशाना साधा और उन्हें हैबिचुअल लूज कैनन बताया। अनुराग ठाकुर की सुनिए।
वायनाड के लोगों को तो छुट्टी मिल गई, अमेठी वाले पहले पा चुके थे। ये जो बहुत पहले से होना था ये अब होके रहा है, और एक बार नहीं, राहुल गांधी जी ने बार बार ऐसे अपराध किए थे।
तो फिलहाल स्थिति ये है कि राहुल गांधी की मेंबरशिप तो चली गई है और उनकी सजा पर अपर कोर्ट से स्टे नहीं लगता तो अगले 8 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते। सोर्सेज कह रहे हैं कि चुनाव आयोग उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी वायनाड में उपचुनाव कराने की तैयारियों में जुट गया है और अप्रैल में इसकी तारीख भी सामने आ सकती है। लेकिन ये जो घटना है उसका राहुल के राजनीतिक भविष्य पर क्या असर होगा, क्या ये उनके लिए झटका है या झटके के साथ आया एक मौका है, ये हमने पूछा इंडिया टुडे टीवी के नेशनल अफेयर्स एडिटर राहुल श्रीवास्तव से।
देखिए, जब भी कोई ऐसी राजनीतिक एडवर्सिटी आती है तो दुष्यंत कुमार जी ने कहा है जो कवि थे कि वो मुतमईन है पत्थर पिघलते नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज के असर के लिए। तो ये अब राहुल गांधी और कांग्रेस पे डिपेंड करेगा कि वो इस प्लेटफॉर्म से, इस आज की जमीनी हकीकत से आगे कहां जाते हैं। मैं सुनने वालों को 2006 में ले जाता हूं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जब मामला आया तो सोनिया गांधी सांसद थी और उनके ऊपर ये आया कि वो डुअल पोस्ट पे हो रही हैं, तो उसके कारण उनका डिस्क्वालिफिकेशन का मामला आया। तो कांग्रेस के बड़े नेता उन दिनों सलाहकार होते थे सोनिया गांधी, मुझे फोन आया कि आप आइए, आपसे कुछ बात करनी है। तो मैंने उनसे टाइम मांगा था, तो हम जब गए तो उन्होंने खबर दी कि वो इस्तीफा देने वाली है। तो मैंने उनसे पूछा अहमद जी से कि साहब ये बताइए कि आगे क्या, तो उन्होंने कहा ये सवाल आप सोनिया जी से पूछ लीजिए। सोनिया जी जब बाहर आई बयान के लिए तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने तुरंत कहा कि मैं फिर से चुनाव लड़ूंगी। और उस समय पर बाहर ऐसा माहौल हो गया उस कारण से कि दूर दूर से कांग्रेस का कार्यकर्ता आया और कहीं ना कहीं एक लगा कि मोमेंटम अच्छा बना कांग्रेस के लिए। हालांकि कांग्रेस सत्ता में थी, कांग्रेस के हालात बहुत बेहतर थे, लेकिन उस फैसले में मौका आया तो कांग्रेस तुरंत जो है उसने रिएक्ट किया और एक पॉलिटिकली बोल्ड डिसीजन लिया, जिससे लगा कि कांग्रेस इतनी कीननेस है या शिद्दत है कांग्रेस के अंदर कि वो सत्ता में रहना चाहती है और आगे पॉलिटिकली रेलेवेंट रहना चाहती है। वैसा ही कोई एक फैसला लेना पड़ेगा। दूसरा जो है कि कहीं ना कहीं ये बात अब थोड़ा सा कांग्रेस को और राहुल गांधी को भी देखनी होगी कि लोग कहते हैं कि ये बात नहीं कहने की, तुमने कह दी तो कहने की सजा लो यारो। तो राहुल गांधी ने एक बयान दिया कोलार में, कर्नाटक में 2019 में, आज आके उनको वो देना पड़ा। ये तैश में दिया गया या पॉलिटिकली संभाल के नहीं बोला गया। अगर आप देखिए तो करीब करीब 7 मामले हो चुके हैं जहां पे राहुल को जो बयान दिया है उस पर मुश्किल झेलनी पड़ी है। तो अभी लंदन में जब उनका बयान आया तो कुछ बयान उनके नुआंस्ड नहीं थे। मैं ये नहीं कहूंगा कि उसके खिलाफ जो बीजेपी का कैंपेन हो बिल्कुल सही है, लेकिन कहीं ना कहीं नुआंसिंग की जरूरत थी।
राहुल जी, विपक्ष के लगभग सभी नेता एक सुर में बीजेपी के खिलाफ तो बोल रहे हैं और कम से कम अभी राहुल गांधी के पीछे खड़े दिखाई भी दे रहे हैं। क्या जो ऑपोजिशन यूनिटी की कवायद चल रही थी उसे अपने आप एक धार मिल गई है?
हाँ, अभी भी राहुल गांधी के लिए मौका है कि देश में जिस तरह से बीजेपी की सरकार ने एजेंसीज के जरिए तमाम विपक्ष के जो नेताओं हैं उनके खिलाफ केस दर्ज करवाए हैं तो उससे कुछ असर पड़ रहा है। एक तो जनता में ये मैसेज जा रहा है कि थोड़ी टारगेटिंग हो रही है नेताओं की विपक्ष के, और जो विपक्ष से सरकार बीजेपी में आ जाते हैं वो बच जाते हैं। दूसरा नैरेटिव ये भी हो रहा है उसमें कि विपक्ष के लिए एक सिंपथी जनरेट हो सकती है, राहुल गांधी के लिए सिंपथी जनरेट हो सकती है, लेकिन उसके लिए एक सेंस ऑफ यूनिटी चाहिए। अब यूनिटी के लिए भी एक अच्छा हो रहा है कि अखिलेश यादव ने बयान दे दिया कि वो उनके साथ ये गलत हो रहा है, अरविंद केजरीवाल जो खिलाफ बोलते थे वो भी कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, बीआरएस के नेता जो तेलंगाना में वो भी कह रहे हैं, ममता बनर्जी की पार्टी ने भी कहा। लेकिन आप एक माहौल ये देखिए कि इन सब में राहुल गांधी को जो जुड़ना चाहिए विपक्ष को वो कोशिश नहीं दिखती कहीं। आपको याद होगा कि लोगों को कि सोनिया गांधी को जरूरत होती तो मायावती से मिल लेती थी, मुलायम सिंह से मिल लेती थी, लेकिन राहुल गांधी ममता बनर्जी से नहीं मिलते। दूसरा, विपक्ष को शुभा है राहुल गांधी के एटीट्यूड पे। तीसरा प्रॉब्लम यह है कि राहुल गांधी अपनी पार्टी के अंदर, अगर सोनिया गांधी को 2006 में अहमद पटेल साहब ने कहा कि साहब आप इस्तीफा दे दीजिए, तो एक तो अहमद पटेल जैसे अनुभवी और समझदार नेता थे, आज वैसे नेता नहीं है राहुल गांधी के आसपास। दूसरा, सोनिया गांधी उनकी सुनती थी और आज की तारीख में यह है कि राहुल गांधी बड़े नेताओं की सुनते नहीं है, ये शिकायत है। तो कुल मिलाकर की ये जो स्थिति है ये स्थिति बदलनी होगी राहुल गांधी को।
अच्छा, बीजेपी से ओबीसी के अपमान से जोड़कर देश भर में अभियान चलाने की बात कर रही है, कितना सियासी फायदा उन्हें मिल सकता है इससे?
परेशानी देखिए आप क्या हुई है, क्योंकि ये मामला एपीलेट जो कोर्ट होती है, किसी फैसले के खिलाफ जब आप किसी कोर्ट में जाएं तो आप सीधे हाई कोर्ट नहीं जा सकते। इस मामले में ये ऐसा मामला है जिसमें आपको सेशन कोर्ट जाना, सेशन कोर्ट भी गुजरात में है। अब आप बाद में कहेंगे कि ये कोर्ट तो सारी गुजरात सरकार चला रही है, लेकिन मामला तो सेशन कोर्ट में चलेगा, फिर हाई कोर्ट गुजरात में चलेगा, तो तब तक आप ये सोचिए कि रोज राहुल गांधी की पेशी पे बीजेपी की बयानबाजी जो है वो वैसी की वैसी होगी कि ये पिछड़ा विरोधी हैं। जब बीजेपी पिछड़ा विरोधी इनको सिद्ध करने की कोशिश करेगी तो उस और इनके बयानों पे कि ये इर्रेस्पॉन्सिबल हैं, तो तमाम नेता जो अखिलेश यादव जैसे पिछड़ों का वोट लेने वाले लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी, उन लोगों को कहीं ना कहीं ये संशय होगा कि देखिए इनके बारे में ये कहा जा रहा है तो हम इनसे कितना जुड़ के इनके बगल में खड़े दिखाई दें। दूसरा परेशानी यह है कि बैटल अगर लंबी चलती है और नहीं मान लीजिए राहुल गांधी इस बैटल को जीत पाते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आपको याद होगा कि खुद ही 2013 में कह चुका है कि ये 3 महीने की मियाद नहीं होनी चाहिए अपील की, तो ऐसे संदर्भ में अगर राहुल गांधी सिर्फ डिस्क्वालीफाई नहीं हो रहे हैं, अगले आने वाले 6 सालों तक वो कोई चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर वो चुनाव नहीं लड़ सकते तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री के फेस या विपक्ष के प्रधानमंत्री के अगुवाई करने वाले नहीं बन सकते। अगर वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन फेस, पीएम का फेस नहीं बन सकते या कांग्रेस का, तो आपको एक बात याद रखनी होगी कि विपक्ष के अंदर तमाम नेताओं के मंसूबे हैं कि वो भी शेरवानी सिला करके राष्ट्रपति भवन में शपथ लें, तो विपक्ष की एकता में वो भी एक बड़ी अड़चन आ जाएगी। तो कुल मिलाकर के परेशानियां बढ़ गई हैं। राहुल गांधी केस में फंसे रहेंगे, शायद ये कोशिश हो रही है कि उनको लगातार फंसा के रखा जाए इन सब मामलों में। और दूसरी एक जो कोशिश ये हो रही है कि इस पूरी लड़ाई में राहुल गांधी, आप देखिए कि पिछले कुछ दिनों से पूरा नैरेटिव राहुल गांधी है, और बीजेपी की तरफ से शायद कोशिश ये हो रही है कि अगर उनको इतिहास में लग गया है पिछले कुछ सालों में कि जहां जहां बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होता है वहां बीजेपी ज्यादा अच्छा करती है, और जहां जहां रीजनल पार्टी क्षेत्रीय छत्रप होते हैं वहां बीजेपी उतना अच्छा नहीं कर पाती है। तो नैरेटिव बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, मोदी वर्सेस राहुल, एक्सपीरियंस वर्सेस इनएक्सपीरियंस, ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है।
बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी। पंजाब में अमृतपाल सिंह ने सरकार की नाक में दम कर रखा है। हफ्तों से पंजाब पुलिस उसकी तलाश में है, रोज उसकी कोई ना कोई फोटो सामने आती है, आपने भी देखी होगी, मगर वो पकड़ में नहीं आता। कहा जा रहा है कि वो हरियाणा से होता हुआ अब उत्तराखंड भाग गया है, जिसके बाद देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। कल ही पुलिस ने अमृतपाल से जुड़े 207 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। इसके अलावा बलजीत कौर, जिस पर अमृतपाल और उसके साथियों को घर में छिपाने के आरोप हैं, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अमृतपाल नेपाल भागने की तैयारी में है, जिसके बाद उत्तराखंड से लगे नेपाल के बॉर्डर पर सिक्योरिटी जो है अब टाइट कर दी गई है। भारतीय खुफिया एजेंसी का कहना है कि आईएसआई अमृतपाल को मोहरा बनाकर यूज कर रहा है ताकि राज्य में जो अलगाववादी सेंटिमेंट है उन्हें भड़काया जा सके। अब सवाल यह है कि पंजाब पुलिस अपनी तहकीकात में अब तक कहां पहुंची है, और हमने ये पूछा है चंडीगढ़ में आज तक रेडियो रिपोर्टर हैं मंजीत सहगल उनसे।
देखिए, पंजाब पुलिस की जो जांच है वो सिर्फ हरियाणा के शाहबाद तक आकर ठहर जाती है। उसे पहले जो आपको घटनाक्रम है वो आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा कि 18 तारीख को अमृतपाल सिंह फरार हुआ था, और वो पहले तो है लगभग 20 किलोमीटर के दायरे में जलंधर में घूमता रहा, और देर रात को वो निकल गया। सबसे पहले वो जलंधर पहुंचा, जलंधर से पहुंचा लुधियाना, लुधियाना से फिर अगले दिन के लिए निकल गया, फिर पटियाला गया, और पटियाला से वो पहुंचा शाहबाद। शाहबाद कुरुक्षेत्र से पहले आता है, और वहां पर एक महिला के घर में ठहरा। उसके बाद अगले दिन महिला को ये कहकर चला गया कि वो उत्तराखंड गया। महिला का फोन भी इस्तेमाल किया कि अब गिरफ्तारी हो चुकी है, तो अब वही अगर जांच की बात करें तो जांच का दायरा बढ़ गया। जांच सिर्फ पंजाब तक ही सीमित नहीं है, हरियाणा में भी जांच हो रही है, पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी जांच हो रही है, और हिमाचल में भी नजर बनाए हुए पंजाब पुलिस की टीम इस वक्त उत्तराखंड में कैंप कर रही है, राजस्थान पुलिस की भी मदद ली जा रही है। संशय ये जताया जा रहा है कि हो सकता है अमृतपाल सिंह नेपाल के रास्ते विदेश भागने में कामयाब हो जाए। तो अब उत्तराखंड की कई जगहों पर छापेमारी हो रही है, पुलिस लोगों से अपील कर रही है, लाउडस्पीकर पर बकायदा अनाउंसमेंट हो रही है, कोई भी व्यक्ति अमृतपाल सिंह और उसके साथियों को पनाह देने की कोशिश ना करे वरना उनके खिलाफ रासुका लगाया जा सके। उत्तराखंड की पुलिस को जो अलर्ट मिला था कि वो उत्तराखंड हो सकता है उसके मुताबिक काम कर रही है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अमृतपाल सिर्फ उत्तराखंड ही जाए। अब दूसरा अंदेशा ये है कि हो सकता है महाराष्ट्र चला जाए, नांदेड़ में उसके काफी समर्थक है, और नांदेड़ में कुछ इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं वो पहले ही पुलिस की नजर में है, वो कहीं किसी भी जगह जा सकता है। पुलिस की जांच अब तेज हो गई है, 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, अमृतपाल के कई साथियों पर नजर रखी जा रही है। वहीं अब पुलिस की जांच में एक ये खुलासा भी हुआ है कि अमृतपाल सिंह न केवल आनंदपुर खालसा फौज बना रहा था, बल्कि वो अपने नाम से अमृत टाइगर फोर्स भी बना रहा। उसके लेकर ये खुलासा जो है उसके करीबी साथी जिसको गोरखा बाबा के नाम से जाना जाता है उसकी गिरफ्तारी के बाद हुआ है। उसके 3 मोबाइल फोन से खालिस्तान के जो एम्बलम है वो बरामद हुए हैं, कुछ उर्दू में लिखे हुए एम्बलम भी मिले हैं और कुछ ऐसी स्टेट्स जो आजादी से पहले की थी पंजाब में उनके नाम से एल्बम मिले हैं। और वही उसकी जो फायरिंग रेंज है अमृतपाल के घर के पास जहां पर इनको अपने साथियों को वो प्रशिक्षण दे रहा था उसके विजुअल भी वहां पर मौजूद हुए हैं। तो अब जो छापेमारी है वो भी तेज हो गई है, पुलिस उसके कई और साथियों की तलाश कर रही है। और वहीं जो मनी ट्रेल है ये उसको विदेशों से कहां कहां से पैसा आया उसको भी एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है।
मंजीत, ये भी कहा जा रहा है कि वो पंजाब में नशा मुक्ति को मुद्दा बनाकर अपने प्रति जो है एक माहौल बना रहा है ताकि उसके प्रति जो है अच्छी फीलिंग लोगों में फैले, संवेदना हो, ये कैसे?
एक तरफ देखिए किस तरह से वो कानून जाक उड़ा रहा था, वही भारतीय संविधान और भारत की जो सिक्योरिटी है उसके लिए भी बड़ा खतरा बनता जा रहा था। आर्मी सरकार के खिलाफ अपनी खड़ी कर रहा था और अब जो भारतीय खुफिया एजेंसियों के जो इनपुट आए हैं उससे अब ये भी साफ होता है कि वो उसके जो चरित्र है वो भी कुछ अलग था। वो जिस तरह का वो साबित खुद को करना चाहता था उससे बिल्कुल परे हटके था। अब जो ताजा जानकारी आई है वो ये, वो बार बार थाईलैंड जा रहा था। थाईलैंड क्यों जा रहा था? क्या वहां पर ISI का कोई अड्डा है? क्या खालिस्तान की ट्रेनिंग वहां पे कोई दी जाती है? या फिर वो खुद वेश्यावृत्ति में संलिप्त था? क्योंकि थाईलैंड तो इन चीजों के लिए बदनाम है और ऐसा सिक्योरिटी एजेंसी ये भी अनुमान लगा रही है कि हो सकता है उसकी पत्नी वहां पे हो क्योंकि उसने दूसरा विवाह किया। और वही जो उसकी मौजूदा पत्नी है किरणदीप कौर, अब उसको लेकर भी सुरक्षा एजेंसियां ये खुलासा कर रही है कि अमृतपाल उसके साथ मारपीट करता था, लोगों से मिलने जुलने नहीं देता और उसे धमका कर रखता है और जबरदस्ती उसने उसको कैद करके रखा है, ऐसे जो इनपुट्स मिले हैं। तो कुल मिलाकर जो भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की जो जांच है उसके मुताबिक अब अमृतपाल का जो असली चाल, चेहरा और चरित्र है वो भी उजागर हो गया है।
बहुत बहुत शुक्रिया मंजीत। आज 24 मार्च है, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। सरकार ये दावा करती आई है कि उसने टीबी पर काफी हद तक जीत हासिल कर ली है। खुद प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि 2025 तक भारत टीबी मुक्त हो जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आज बनारस में ही थे। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि भारत में हर साल 24 लाख लोगों को टीबी होता है जिसमें से 94,000 लोगों की जान जाती है। सरकार टीबी मरीजों के लिए कई योजनाएं चला रही है, उन्हें आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है। इसके अलावा एक और खबर है जो टीबी से जुड़ी है। मल्टीनेशनल अमेरिकन कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन एक दवा बनाती है बेडाक्विलाइन, मगर इस साल जुलाई में कंपनी का इस दवा पर पेटेंट खत्म हो जाएगा। अब कंपनी भारत में अपने पेटेंट अधिकार की अवधि बढ़ाना चाहती है लेकिन भारत सरकार ने इसे खारिज कर दिया है। सरकार का कहना है कि भारतीय कंपनियां भी अब इस दवाई को बना सकेंगी, वो भी सस्ते में। तो इस दवा की महत्ता और पेटेंट खत्म होने से जो फायदे होते हैं उन्हें विस्तार से समझने के लिए हमने बात की है मणिपाल हॉस्पिटल गुरुग्राम में रेस्पिरेटरी एंड क्रिटिकल केस स्पेशलिस्ट पीयूष गोयल से।
ये जो मेडिसिन है बेडाक्विलाइन, ये नो डाउट बहुत ही अच्छी दवाई है और ये बिल्कुल नई दवाई है अभी, और इसके ऊपर जो स्टडीज हुई हैं तो बहुत ही अच्छे इफेक्ट्स आए हैं। लेकिन अगर हम देखें इस मेडिसिन को, हमारी जितनी भी अभी तक गाइडलाइंस हैं और सब चीजें हैं, इसको हमने मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के लिए रिजर्व में रखा हुआ है। ये नॉर्मल टीबी के मरीजों को नहीं दी जाती है, ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के मरीजों के लिए ही अवेलेबल है। और गवर्नमेंट की तरफ से भी MDR टीबी सेंटर्स जितने भी हैं चारों तरफ ऑल ओवर इंडिया, वहां पे ये मेडिसिन अभी उपलब्ध है। और मुझे नहीं लगता कि इस मेडिसिन को अगर हम ओवर द काउंटर देना शुरू करते हैं तो टीबी की लड़ाई में इससे सहायता मिलेगी, रादर जबकि टीबी की लड़ाई और कठिन हो जाएगी अगर ये लोग, हमारे फिजिशियंस, हमारे डॉक्टर्स इसको नॉर्मल टीबी के केसेस में भी देने लग जाएंगे तो इसकी रेजिस्टेंस भी बहुत जल्दी पैदा हो जाएगी हमारे शरीर में और फिर ये भी रेजिस्टेंट हो जाएगा और एक जो वेपन है हमारा वो हमारा खराब हो जाएगा जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस से लड़ने।
पीयूष जी, 2025 तक सरकार ने टीबी को खत्म करने का टारगेट रखा है और आंकड़े बताते हैं कि दुनिया में अभी भी 25% टीबी के मरीज हमारे देश में पाए जाते हैं, मरने वालों की संख्या भी लाखों में है। तो ऐसे में 2025 तक ये लक्ष्य प्रैक्टिकली आपको हासिल होता दिखता है?
जी, सबसे पहली बात हमें ये मानना पड़ेगा कि ये टीबी की बीमारी अभी नहीं शुरू हुई है, ये बहुत ही पुराने समय से, हजारों सालों से टीबी की बीमारी हमारे देश में उपस्थित है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि हमें कुछ ना कुछ तो टारगेट रखने पड़ेंगे टीबी को समाप्त करने के, और अगर आप देखें ये जो टारगेट हमने रखा 2025 का, इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। अगर आप देखें कि क्या फायदा हुआ है कि एक तो हमारा टीबी के मरीजों को पकड़, जो हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनको पहचानने की जो हमारी जो पूरी की पूरी प्रोसीजर है, जो व्यवस्था है, वो बहुत ज्यादा बेहतर हुई है, और हम बहुत ज्यादा मरीजों को अर्ली स्टेजेस के अंदर पकड़ पा रहे हैं, और जिससे उनका जल्दी इलाज हो, और अगर जल्दी इलाज नहीं होगा तो वो पेशेंट्स और लोगों को टीबी को फैलाएंगे, स्प्रेड करेंगे और लोगों को, तो जितनी जल्दी उनका इलाज शुरू होगा उतना हम स्प्रेड को रोक सकते हैं। और आप अगर अभी आंकड़े देखें तो अभी जो है टीबी के केसेस कुछ बढ़ गए हैं, इंसिडेंस उनका जो है ज्यादा हो गया है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स, तो इससे ये पता लगता है कि हम लोग टीबी के पेशेंट्स को बहुत ही एक्टिव तरीके से जल्दी उनको पकड़ रहे हैं, और लोगों की भी अवेयरनेस और जागरूकता बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि थोड़ा सा भी खांसी होता है 2 से 3 हफ्ते का, तो वो एक बार डॉक्टर से मिलते हैं, और जहां पे उनको फायदा होता है। थर्डली, हमारे जो जनरल फिजिशियंस हैं, जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं या फिर गवर्नमेंट के प्रैक्टिशनर्स हैं, वो उन सबको डॉट्स के ऊपर बहुत भरोसा हुआ है, और मेडिसिन की क्वालिटी से लेके हर चीज बहुत बेटर हुई है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स, तो इस वजह से हम टीबी को एक, देखो डायरेक्शन बिल्कुल सही है, अब ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि केसेस बहुत ज्यादा हैं, और लेकिन अगर हम इसी तरह से प्रयास करते रहे तो कुछ भी असंभव नहीं।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक बीमारी है DMD, यानी कि डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसमें मांसपेशियों की जो सेल्स होती हैं उनमें डाइस्ट्रोफिन प्रोटीन का उत्पादन कम हो जाता है, या उसका उत्पादन जो है पूरी तरह से बंद हो जाता है, जिस कारण मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर हो जाती हैं, खत्म होने लगती हैं, और फिर 30 की उम्र आते आते शरीर में जान बाकी नहीं रहती, जिस कारण उस व्यक्ति की मौत हो जाती है जो इस बीमारी से पीड़ित होता है। भारत में इस बीमारी के ऊपर काम ना के बराबर हुआ है। DMD की दवा भी करोड़ों में आती है, तो जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, गरीब हैं, उनके लिए तो हासिल कर पाना नामुमकिन है। तो ले देकर एक ही उपाय बचता है, सरकार को इसके ऊपर पॉलिसी लेवल पर काम करना पड़ेगा। तो फिर आज दिल्ली के जंतर मंतर पर DMD से पीड़ित बच्चों के माता पिताओं ने रैली निकाली, सरकार के सामने अपनी मांगे रखी,
गुहार लगाने आए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि हमारे बच्चों के लिए कुछ इलाज जो है मुहैया कराया जाए। आज की डेट में DMD नामक बीमारी का कोई इलाज दुनिया में कहीं नहीं है, तो हमारा उम्मीद ये है कि गवर्नमेंट को कुछ काम करना चाहिए इसके अराउंड कि क्लिनिकल ट्रायल जैसे दुनिया में बहुत जगह पे हो रहे हैं, दवाई जो दवाइयाँ आने वाली हैं आने वाले टाइम में जो DMD को क्योर करेगी, ऐसा कोई भी क्लिनिकल ट्रायल इंडिया में नहीं हो रहा, ना किसी बाहर की कंपनीज के थ्रू हो रहा है, ना हम इंडिया के कोई डॉक्टर कर रहा है या कोई साइंटिस्ट इवॉल्व कर रहा है। हमारे इंडिया में कैपेबिलिटी काफ़ी है, काफ़ी डॉक्टर्स ने मॉडल्स बनाए हैं टेस्ट इसके दवा के, बट उनको फंडिंग के अभाव में और गवर्नमेंट के सपोर्ट के अभाव में कोई मेडिसिन डेवलप नहीं की जा रही।
तो ये जो डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डिजीज़ है, इसे थोड़ा सा और विस्तार से जानते हैं, और इसके लिए हमने बात की उजाला सिग्नस हॉस्पिटल के फाउंडर डायरेक्टर डॉक्टर सुचिन बजाज से।
ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें प्रोग्रेसिवली हमारे बॉडी के सारे मसल्स यानी मांसपेशियां धीरे धीरे खराब हो जाती हैं, टूट जाती हैं, डीजेनरेट हो जाती हैं और वीक हो जाती हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर प्रोटीन होता है डिस्ट्रोफिन, उसकी खराबी होती है इसमें। तो ये 4 बीमारियां हैं जिनको हम डिस्ट्रोफोपैथीज बोलते हैं, जिसमें डिस्ट्रोफिन खराब होता है। तो उसमें सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा फास्ट प्रोग्रेसिंग DMD है जिसको हम ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी बोलते हैं। इसका नाम एक फ्रेंच साइंटिस्ट पर है जिन्होंने पहली बार करीब करीब 1860 में इसको डिस्क्राइब किया था, जिनका नाम ड्यूशेन था। और एक डीएमडी एसोसिएटेड कार्डियोमायोपैथी होता है, यानी हार्ट के मसल्स जिसमें वीक होते हैं, बाकी क्लिनिकल जो बाहर के मसल्स हैं जो लेग्स के, कोर के, आर्म्स के, वो अफेक्टेड नहीं होते हैं। ये ज्यादातर बॉयज में होता है, बहुत बहुत रेयर केसेस में गर्ल्स में भी आ सकता है, बट यूजुअली बॉय होता है, क्योंकि एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन है ये। उसके बारे में मैं अभी थोड़ा विस्तार में बताता हूँ। करीब करीब 2 से 3 साल में उम्र में ये दिखना शुरू हो जाता है। बच्चों में वीकनेस आ सकती है, लोअर बॉडी की वीकनेस, जैसे टांगों के मसल्स की पहले आती है, तो चलने में, कूदने में, भागने में बच्चों को वीकनेस हो सकती है, मुश्किलें हो सकती हैं। काव्स जो है, जो जिसको पिंडली बोलते हैं, वो मोटे मोटे होने लगते हैं। इट बैडली जैसे बतख चलती है वैसे बच्चा चलने लगता है, और स्पाइन पर भी अफेक्ट आने लगता है। धीरे 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 ये स्पाइन और वीक होने की वजह से, मसल वीक होने की वजह से स्पाइन टेढ़ी हो जाती है और स्कोलियोसिस हो जाता है, जिसकी वजह से लंग फंक्शन पे भी प्रॉब्लम आती है, रेट्री फेलियर होता है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव का मतलब है कि देखिए हमारे अंदर दो तरह के हॉर्मोन्स होते हैं जो सेक्स डिटर्मिनेशन, एक्स और वाई। जो लड़कियां होती हैं उनमें डबल एक्स होता है, जो दो एक माँ से और एक फादर से वो लेती हैं। जो बॉयज होते हैं वो वाई क्रोमोसोम अपने फादर से लेते हैं और एक्स क्रोमोसोम मदर से लेते हैं, तो उनके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। तो जो विमेन कैरियर्स हैं इसकी, उनके एक एक्स क्रोमोसोम पे ट्रोफिन खराब वाला है वो होता है और दूसरे पे नॉर्मल होता है। जब उस खराब एक्स क्रोमोसोम अगर अपने बेटे में वो दे देती हैं, तो क्योंकि उनके पास दूसरा नहीं है एक्स क्रोमोसोम और दूसरा वाई है, तो इसकी वो डिजीज डेवलप हो जाती है उस लड़के में।
डॉक्टर साहब, पॉलिसी लेवल पर सरकार को कौन कौन से कदम उठाने चाहिए आपको जो लगता है इस बीमारी के खिलाफ?
देखिए, सिर्फ ये बीमारी नहीं, कई ऐसी बीमारियां जो जेनेटिक हैं, जैसे अभी सरकार ने कहा है कि वो सिकल सेल डिजीज को इरेडिकेट करने के लिए मुहिम चालू कर रहे हैं। ऐसे ही थैलेसीमिया एक बीमारी है जो जेनेटिकली लिंक्ड है, जो जेनेटिक्स से आती है, और इस तरह ये भी। तो मेरे ख्याल से एक अवेयरनेस जगाना कि जिसकी वजह से लोगों को पता चले कि ऐसी जेनेटिक बीमारियां होती हैं जो माँ अपने बच्चों को दे सकती है, फादर अपने बच्चों को दे सकते हैं, और उनकी स्क्रीनिंग पहले ही करना। वी नीड टू मेक श्योर कि ऐसे बच्चों की स्क्रीनिंग इन यूट्रो ही हो जाए, ताकि आगे जाकर उनको तकलीफ ना हो। तो मेनली अवेयरनेस कि कुंडली मिलाने की जगह आप अपना जेनेटिक चेकअप कराएं और उसका टेस्ट करा के दूसरे से मिलके शादी करें, आई थिंक वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसी अवेयरनेस से हम सारी की सारी जेनेटिक डिजीजेस को उसको बचा सकते हैं, बच्चों को उनको ठीक रख सकते हैं, उनको हो ही ना ये बीमारी कर सकते हैं। तो एक गवर्नमेंट को चाहिए एक मेजर अवेयरनेस इनिशिएटिव चालू करें। जो सिकल सेल डिजीज अवेयरनेस आया है, उससे ये मेरे ख्याल से इस पर भी असर होगा और गवर्नमेंट इसके लिए भी अवेयरनेस शुरू करेगी। तो मुझे लगता है कि मेन पॉलिसी डिसीजन यही है कि अवेयरनेस हो इन डिसऑर्डर्स का, क्योंकि एक बार ये हो जाते हैं तो इनको फिर ठीक करना बहुत मुश्किल है। काफी लोग कहते हैं कि इनकी दवाइयाँ फ्री मिलनी चाहिए पेरेंट्स को, बट करोड़ों रुपए की दवाई एक मरीज के लिए देना, देखिए गवर्नमेंट का बजट भी लिमिटेड है, तो इसके लिए रिसर्च को इनकरेज करना चाहिए ताकि हम सस्ती दवाई बना पाएं, कुछ नई चीजें निकाल पाएं, और अवेयरनेस ही मेन इसमें इनिशिएटिव होगा।
शुक्रिया डॉक्टर साहब। और अब वक्त है हमारे खास सेगमेंट भौचक का, जिसका आपको इंतजार रहता है, और ले आए हैं जमशेद कमर सिद्दीकी।
दुनिया में चेहरा पढ़ने की कला में दो तरह के लोगों को उस्तादी हासिल है। एक तो होते हैं साइकोलॉजिस्ट, जो इंसान के चेहरे के तासुरात से, उसकी उठती गिरती पलकों से, भावों के उतार चढ़ाव से, होठों की जुम्बिश से बता देते हैं कि आदमी क्या सोच रहा है। और दूसरे होते हैं रेलवे के TTE, यानी ट्रेन टिकट एग्जामिनर। ये वो लोग हैं जो ट्रेन के अंदर बैठे लोगों के चेहरे और कभी कभी सिर्फ आंखें देखकर समझ जाते हैं कि इस आदमी के पास टिकट है या नहीं है। इनको हमेशा पता होता है कि आखिर इनके कैबिन के पास आते ही किसी आदमी को बाथरूम जाने की जरूरत क्यों पड़ी। TTE, जिन्हें आम बोलचाल की जबान में टिकट बाबू कहते हैं, आदमी सूंघकर बता देते हैं कि ये आदमी बा टिकट है या बे टिकट। काले कोट वाले इन्हीं लोगों को देखकर प्लेटफॉर्म पर बिना टिकट चल रहे लोग अचानक कॉन्शियस होकर आपस में पतियाने लगते हैं ताकि नॉर्मल लग सके, लेकिन पकड़े जाते हैं। हालांकि टीटी का जब भी जिक्र आता है तो जहन में सबसे पहले किसी पुरुष का चेहरा आता है, जबकि हकीकत यह है कि भारतीय रेलवे में महिला टीटी भी खूब हैं, और न सिर्फ खूब हैं बल्कि उनमें बिना टिकट सफर करने वालों को पहचानने और उनसे फाइन वसूलने की कला भी कूट कूट कर भरी है। ऐसी ही एक फीमेल चीफ टिकट इंस्पेक्टर हैं दक्षिण रेलवेज में काम करने वाली रोजलीन अरोकिया मैरी। अब बताते हैं इनके बारे में क्या है भौचक खबर। तो हुआ यह है कि रोजलीन ऐसी पहली महिला टीटी बनी है जिन्होंने बिना टिकट या अवैध तरीके से रेलवे में यात्रा कर रहे लोगों से 1 करोड़ रुपए की राशि कलेक्ट की है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने रोजलीन के सम्मान में कुछ रोज पहले एक ट्वीट किया जिसमें ट्रेन और प्लेटफॉर्म पर यात्रियों का टिकट चेक करते हुए उनकी तस्वीर भी है। ट्वीट में लिखा था, शोइंग रेजोल्यूट कमिटमेंट टू हर ड्यूटीज, श्रीमती रोजलीन अरोकिया मैरी बिकम्स द फर्स्ट वुमेन ऑन द टिकट चेकिंग स्टाफ ऑफ इंडियन रेलवेज टू कलेक्ट फाइन्स ऑफ रुपीज 1.3 crores फ्रॉम इरेग्युलर और नॉन टिकट ट्रेवलर्स। हिंदी मीडियम वालों के लिए बता देता हूँ, इसका मतलब यह है कि अपने काम के प्रति दृढ़ता दिखाते हुए रोजलीन इंडियन रेलवे के टिकट चेकिंग स्टाफ की पहली महिला बन गई हैं जिन्होंने 1 करोड़ 3 लाख रुपए कलेक्ट किए हैं। तो इस खबर पर रोजलीन को हम सब की बधाई और साथ ही साथ उन लोगों को एक नसीहत भी, जो रेलवे आपकी संपत्ति है कुछ ज्यादा सीरियसली लेकर टिकट ही नहीं लेते हैं कि भाई अपनी संपत्ति के लिए पैसे क्या देने। तो भाई साहब टिकट ले लिया कीजिए, क्योंकि बिना टिकट चलने पर जरूरी नहीं है कि हर बार फाइन ही लगे, कभी कभी आदमी अंदर हो जाता है। जमशेद कमर सिद्दीकी, आज तक रेडियो।
वक्त है आपको हैप्पी वीकेंड कहने का। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। इस शो को लेकर कोई सुझाव हो, राय हो, मशवरा हो, शिकायत हो तो प्लीज बताइए radio@aajtak.com पर। आज का दिन भर प्रोड्यूस किया है सूरज कुमार ने, साउंड मिक्सिंग की है कपिल देव सिंह ने, मेरा नाम नितिन ठाकुर है। इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, आज तक रेडियो सुनते रहिए और हैप्पी वीकेंड।